शांति। अव्यक्ति मास चल रहा है और मधुवन वरदान भूमि पर साकार बाबा की पालना लिए हुए अमूल्य रत्न हमें बार बार दर्शन देने आ रहे हैं। इन महान विभूतियों का दर्शन दुर्लभ है, ये आबू की पहाड़ियों पर रहते हैं, लेकिन आज खुले दर्शन देने आए हैं। आदरणीय शीलू दीदी जी 1960 में ज्ञान में आए और 69 में आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया बाबा के सामने ही। और हेडक्वार्टर पर आने से पहले आप भारत के भिन्न भिन्न शहरों में 74 तक सेवा करते रहे। 74 से 76 तक बाबा ने आपको विदेश सेवा पर भेजा, परंतु अचानक बाबा ने आपको मधुबन में रख लिया, ये कहते हुए कि आप ज्ञान की गंगा हो। गंगा का मान तो सब जगह होता है, लेकिन हर की पौड़ी पर सबसे ज्यादा होता है, तो आप हर की पौड़ी की गंगा हो। और आप पर माँ सरस्वती का विशेष वरदान है, ऐसे विशेष वरदान देते हुए स्वयं भगवान ने आपको मधुबन में रखा। और तब यहाँ योग शिविर के लिए बाहर के भाई बहनों का आना शुरू हुआ था, और केवल शीलू दीदी थे उस समय जो योग में एकदम एक्सपर्ट हराने वाली की बुद्धि को सेट करें। तो आप राजयोग शिविरों की हेडक्वार्टर में निदेशिका हैं और राजयोग शिविरों के माध्यम से अनेकों आत्माओं ने लाभ लेकर बाबा को अपना जीवन अर्पित किया। और टीवी चैनल्स की जो सेवा है आदरणीय शीलू दीदी जी के द्वारा शुरू हुई, जी टीवी पर सबसे पहले जो ब्रह्मा कुमारी के कोई प्रवचन प्रारंभ हुए थे तो उसका कारण दीदी जी बने, फिर संस्कार, फिर आस्था, इन सब चैनल्स के दरवाजे आदरणीय दीदी जी के द्वारा खुले। और अब तो अपने ही कितने टीवी चैनल है और हर चैनल पर हमको शीलू दीदी जी तो अवश्य दिखाई देंगे। आप टीचर ऑफ टीचर्स हैं, आपने अपने जैसी अनेकों बहनें तैयार की हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एजुकेशन विंग की आप वाइस चेयरपर्सन हैं, और सच में जब आप सुनते हैं तो आपको महसूस होता है कि दीदी के जिह्वा पर तो माँ सरस्वती स्वयं विराजमान है। इतनी विद्वता, दक्षता और स्पष्टता से आप एक एक बात को सबके हृदय में उतार देते हैं, और साथ ही साथ ट्रांसलेशन का भी जबरदस्त वरदान है आपको। अनेकों वर्षों तक और कुछ कुछ अभी भी विदेशी भाई बहनों के लिए आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का माध्यम बने रहे। 75 से अधिक देशों की आप यात्रा कर चुके हैं। इतने महान होने के बावजूद भी जब भी आपसे मिलो नजदीक से ऐसे बात करेंगे जैसे कोई सखी होती है, कोई छोटी बहन होती है। अपनी बात की करेक्शन हम छोटों से पूछेंगे तो ऐसी विनम्रता की महान देवी को हम नमन करते हैं। और आज का बहुत विशेष विषय है आपका ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत अवस्था। आदरणीय शीलू दीदी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी भाई बहने बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस अव्यक्ति मास में और उसमें भी 18 जनवरी बाबा के घर में मना चुके हैं। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए कितनी प्रेरणाएं देते रहते हैं। ब्रह्मा बाप कर्मातीत बन संपूर्णता को प्राप्त हुए, किस लिए? हम सबको संपूर्ण बनाने के लिए। तो ये संपूर्णता की स्थिति कैसे उन्होंने प्राप्त की, जो हम उनसे प्रेरणा ले और हम भी ऐसे संपूर्ण बन जाएं। तो 18 जनवरी हमें वही याद दिलाती है, जिस दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सारी शक्ति बहनों को दी, दृष्टि और हाथ द्वारा सब विल पावर्स दे दिए। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा गुप्त रहे और शक्तियों को आगे किया। आज भी बाबा ने शक्तियों को कितना याद किया। शिव और शक्ति दोनों का कितना सुंदर मिलन है। पांडवों के लिए बाबा ने कहा पांडव पति सदा याद है, पांडव पति के साथ है, और शक्तियों के लिए कहेंगे शिव के साथ है। तो ऐसे बच्चे बाबा के, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको यही लक्ष्य दिया कि तुमको भी ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाबा में क्या विशेषताएं थी जो इतना जल्दी संपूर्ण बन गए, और हम उनको कैसे फॉलो करें जो हम भी ऐसे बन जाएं? वैसे तो ब्रह्मा बाबा यही कहते रहे, मैं भी तो तुम्हारी जैसा हूं। लौकिक में तो गृहस्थी थे, व्यापारी थे, परिवार था, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, लेकिन कैसे शिव बाबा ने उनको धक से वैराग्य दिलाया? कौन सी ऐसी बातें थी जिसके आधार से बाबा को फट से वैराग्य आ गया? सबसे पहला जो कदम था, शिव बाबा ने उनको विष्णु का साक्षात्कार कराया, और विष्णु ने उनको कहा कि जैसे मैं चतुर्भुज हूं, तुम भी मेरे जैसे हो। तो बाबा को तो पहले नशा चढ़ा दिया शिव बाबा ने कि मैं विष्णु समान हूं, जबकि बाबा पहले विष्णु के भक्त थे। विष्णु तो उनके इष्ट थे, लेकिन विष्णु ने उनको साक्षात्कार में यही कहा तो मेरे जैसे हो। तो बाबा को नशा चढ़ गया कि आज तक तो मैं केवल इनकी भक्ति करता था, लेकिन मैं ये बन सकता हूं। ये बाबा की आंख खुल गई, तो कैसे मैं भी विष्णु समान बन सकता हूं? वो जो नशा बाबा को चढ़ा उस समय, उसके आधार से पहले तो इस कलयुगी दुनिया से वैराग हुआ। फिर उस वैराग्य में और जोर कब भरा? जब विनाश का साक्षात्कार हुआ। विनाश के साक्षात्कार में बाबा ने देखा कि सारी दुनिया नष्ट हो गई, अणु युद्ध के द्वारा, ग्रह युद्ध के द्वारा, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा ये दुनिया नष्ट हो गई। एकदम प्रलय जैसी स्थिति आ गई तो बाबा को वैराग्य और ज्यादा हो गया इस कलयुगी दुनिया के लिए। पर बाबा को ये समझ में नहीं आया कि ये वैराग्य इसी कारण से आया है। ये तो शिव बाबा उनको तैयार कर रहे थे और बाबा ने एकांतवास ले लिया। उस एकांतवास में बाबा को सतयुगी दुनिया का अनुभव हुआ और परमात्मा के द्वारा उनको ये आदेश मिला कि ऐसी सतयुगी दुनिया तुमको बनानी है। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। तो जब किसी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो वो और सब बातें भूल जाता है, उस जिम्मेदारी में लग जाता है। और क्या जिम्मेदारी दी कि तुमको ऐसी सतयुगी दुनिया बनानी है। बहुत बड़ा काम दिया, सारी दुनिया को बदलकर इस कलयुग को सतयुग बनाना, ये जिम्मेदारी भगवान ने दी। अब कैसे बनाना है ये तो बाबा शिव बाबा ने बताया नहीं, पर जिम्मेदारी जरूर मिल गई। मैं ही विष्णु हूँ, विष्णु बनूंगा और ये कलयुगी दुनिया खत्म हो जाएगी, सतयुग आएगा और परमात्मा मेरे द्वारा बनाएंगे। पर कैसे बनाएंगे ये तो बताया नहीं, लेकिन एक बात जरूर उनको समझ में आ गई कि भगवान को मेरे से कुछ बड़ा काम करवाना है। और ये बिजनेस करता रहूंगा, भले सबसे बड़ी बिजनेस थी, हीरे जवाहरातों के जेवर बनाते थे, राजाओं महाराजाओं के साथ उठना बैठना था, अंग्रेज लोग उनके तो बहुत ग्राहक थे, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, हाँ उस समय कैसे वो भी उनके पास आकर के खरीदारी करते थे, इतनी बड़ी बिजनेस थी उनकी। पर धक से सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि भगवान ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। तो इस कलयुगी दुनिया से बहुत वैराग्य तो आ ही गया और लक्ष्य भी मिल गया कि तुमको ऐसा बनना है विष्णु समान, और उसके लिए पहले सतयुगी दुनिया की स्थापना करनी है। पर कैसे करना है वो अब तक पर्दे में था, और कैसे ये सब उनको स्पष्ट हुआ जब बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। एक क्रांति फैल गई साक्षात्कारों की। पर बाबा को खुद समझ में नहीं आता था कि जैसे ही मैं किसको दृष्टि देता हूँ वो ध्यान में चला जाता है, स्वर्ग का साक्षात्कार करता है, या मुझे श्री कृष्ण के रूप में देखता है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैराग्य तो अंदर का आ ही गया था। और कैसे उस वैराग्य के फल स्वरूप बाबा ने एक यज्ञ रचा, इतना बड़ा कार्य शुरू किया, और कैसे बहनें इसमें समर्पित हुई। उन बहनों ने भी कुछ नहीं देखा, बस साक्षात्कार की जो धूम मची हुई थी उसके आधार से वो भी समर्पित होती गई, बाबा के पास आती गई। उन्होंने भी कुछ नहीं देखा, आगे पीछे सुध बुध खत्म, उनकी गृहस्थी क्या होती है, परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, सब कुछ भुला दिया। एक ऐसी क्रांति हो गई, साक्षात्कारों की क्रांति, और बहनें आने लगी जो बाबा बताते हैं ना कि उस समय महिलाएं जो थी, बहनें, माताएं जो थी, वो तो पर्दे नशीन थी। पर्दे नशीन होने के कारण वो कहीं बाहर जाती भी नहीं थी, घर में ही रहती थी, चार दीवारों में। कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं थी, महिलाएं दबाई हुई थी, पुरुष प्रधान समाज था जिसमें स्त्रियों को समाज में कोई स्थान नहीं था, बस एक केवल अपना परिवार संभालना। लेकिन कैसे बाबा ने उनको शिव शक्ति बनाया, उनको अबला से सबला बनाया और विश्व परिवर्तन के कार्य में उनको तपस्या में लगाया और खुद भी तपस्या में लग गए और 14 सालों तक उस तपस्या के बलबूते पर कैसे ये शिव शक्तियां प्रकट हुई। तो ये सब ईश्वरीय चमत्कार था जो इस यज्ञ की शुरुआत हुई। लोग बहुत पूछते हैं ये बातें, ये सब कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ। और बाबा सदा यही कहते थे कि मैं सन्यासी नहीं हूं, क्योंकि बाबा ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, परिवार साथ में ही था। बाबा की लौकी युगल भी साथ में थी, सब बहू बेटा पोता दोता दोते सब थे, 5 बच्चे थे, उनकी शादी भी कर ली थी। पर 60 साल की उम्र में ये परिवर्तन उनके जीवन में आया और ये यज्ञ स्थापित किया। बाबा इसको यज्ञ क्यों कहते हैं, अलौकिक परिवार है, अलौकिक घर है, विश्वविद्यालय है, लेकिन बाबा इसको यज्ञ भी कहते हैं। तो यज्ञ किस लिए रचा जाता है, जब कोई आफत आती है, बारिश नहीं पड़ती है, सूखा पड़ता है, तो यज्ञ करते हैं। कोई ऐसा विघ्न आता है तो यज्ञ करते हैं। और यज्ञ में क्या करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो बाबा ने भी सबसे विकारों की आहुति दिलवाई। जिन विकारों की आहुति से बाबा ने कहा अब ये विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होगी। तो कैसे यज्ञ रचा गया, और एक तरफ 1936-37 में ये यज्ञ की शुरुआत हुई, माताओं बहनों को भगवान ने आगे किया कि आप स्वर्ग का द्वार खोलने वाले हैं, और दूसरी ओर दुनिया में भी नारी का सम्मान होने लगा, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि कैसे जब से शिव बाबा ने माताओं बहनों को आगे किया तो दुनिया वालों ने भी माताओं बहनों को आगे किया। उस समय राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, ये ऐसे समाज सेवी होकर गए जिन्होंने नारी को आगे किया, समाज में उनको एक सभ्य स्थान दिया, नहीं तो वो दासी बनकर ही केवल रही, पर्दे नशीन ही रही। और यहां शिव बाबा ने कैसे स्थापना का कार्य शुरू कराया, और ब्रह्मा बाबा कैसे इन सब का की पालना करते हुए भी कैसे न्यारे और प्यारे रहे। उसके बाद पैसा क्या होता है, धन क्या होता है, बाबा तो बिल्कुल उसे उपराम हो गए। शिव बाबा ने उनको जो कहा कि ये सब तुम्हारी अचल अचल प्रॉपर्टी बहनों के नाम कर दो, सब कुछ, सब माना सब कुछ, एक कौड़ी भी नहीं रखी अपने पास, और बहनों को आगे किया और कहा ये बहनें ही स्वर्ग का द्वार बनेगी। तो आज हम देख रहे हैं ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारीज की, ये दुनिया में सबसे बड़ी लेडीज रन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। किसी भी अन्य स्थान पर कोई ऐसी संस्था नहीं जो केवल महिलाएं ही चलाए, और वो भी सारे विश्व में 140 देशों में। तो नारी शक्ति क्या होती है ये शिव बाबा ने दिखा दिया। लेकिन अलौकिक मात पिता ब्रह्मा, अलौकिक पिता और जगत अम्बा सरस्वती अलौकिक माँ बन करके इस परिवार की पालना की, और फिर ब्रह्मा खुद माँ बन गई। ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा नदी का कितना मान है, कहाँ से उसका उद्गम स्थान है ब्रह्मपुत्रा नदी का, बिल्कुल कैलाश पर्वत से। गंगा जमुना तो गंगोत्री जमुनोत्री से शुरू होती, उसका उद्गम स्थान वहाँ है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है, हिमालय की बहुत बड़ी चोटी है। और वो कहाँ से, वो तिब्बत से होते होते कहाँ ये भारत में आई, और फिर जाकर के सागर में समा गई ब्रह्म, वो गंगा सागर, गंगा में विलीन हुई और कैसे वो सागर में समा गई। तो ब्रह्मपुत्रा ये शिव बाबा का सबसे बड़ा बेटा है। बाकी सब नदियां जो है वो तो फीमेल नाम से है, नर्मदा कावेरी या गोदावरी या गंगा जमुना, ये सब फीमेल नाम है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा, ये पुत्रा जो है ये पुरुष का है, ये बेटा पुत्रा, पुत्र और पुत्रा वो पुरुष वाचक, और ये पुत्री वो फिर फीमेल है, इसीलिए पुत्री नहीं है, ब्रह्मपुत्री नहीं है, ब्रह्मपुत्रा। वही नंदीगण, वही कहेंगे कि कैसे भगवान ने इन ब्रह्मा के द्वारा भारत में गंगा बहाई। भागीरथ बन करके ब्रह्मा ने गंगा को भारत के अंदर कोने कोने में भेजा। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने ये सब जो त्याग किया, जो तपस्या की, जो सेवा की, आज उसका ही फल हम देख रहे हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी गति से यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक वट वृक्ष की तरह संसार में फैल गया है। तो ये जब हम सुनते हैं तो अनुभव होता है ये भगवान के कार्य सिवाय और किसी का कार्य नहीं।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बलकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
माया को मार भगा
करो सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है।
तो ब्रह्मा बाबा का त्याग, उनकी तपस्या, उनकी सेवा की बदौलत आज ये हम इस सुंदर वातावरण में आ चुके हैं। तो ये सब बाबा ने कैसे किया? उनके आगे तो कोई था ही नहीं, बस शिव बाबा ने जो कहा वो किया। और दादियों ने ब्रह्मा बाबा को देखा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, और हम फिर दादियों को देखते हैं। और मेरा तो ये सौभाग्य रहा कि ब्रह्मा बाबा मम्मा को भी देखा मैंने। तो ये कैसे सब किया? एक जादू नहीं तो और क्या खेल, जादू ही था। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कभी होगा, भी हो सकता है, पर ये भगवान ने गुप्त रूप से किया और कराया। तो ब्रह्मा बाबा माध्यम बने, जिम्मेदारी समझी, लेकिन कैसे धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा उपराम होते गए, होते गए, होते गए। बाबा के जो अंतिम 2-3 साल थे, ब्रह्मा बाबा बहुत उपराम हो गए थे, बहुत उपराम। इतने उपराम हो गए थे जो बहुत सारी बातें भी सुनना नहीं पसंद करते थे। एक छोटा सा उदाहरण मनोहर दादी जी सुनाते थे हमें। मनोहर दादी ने एक दिन समाचार सुनाया, बाबा कैसे कर्मातीत बन रहे हैं। एक बहन आई बाबा के पास, उसने बहुत सेवा की थी, तो बाबा तो यही कहते थे जो सेवा करो, बाबा को समाचार भेजो, मुरलियों में आता है। तो उसने बहुत सारा लंबा चौड़ा समाचार भेजा सेवा का, और बाबा तो पत्र सुनते थे जो आवश्यक होता था, यीशु दादी उनको बताती थी, क्योंकि कितने पत्र आते थे बाबा के पास, एक एक तो पढ़ना भी मुश्किल, लेकिन जो सार है वो यीशु दादी उनको बताती थी कि क्या क्या सेवाएं हुई है चारों तरफ। तो बाबा को तो पता था। फिर वो बहन जब बाबा के सामने आई तो बाबा तो जैसे उपराम स्थिति में थे, पर वो बहन थोड़ा नशे में थी कि बहुत अच्छी सेवा करके आई थी, बहुत VIPs को बाबा का संदेश दिया था, बहुत कुछ किया था उसने, अच्छी बात थी, पर उस नशे में थी कि बाबा ने मेरे से बहुत सेवा करवाई है। तो वो सेवा समाचार बाबा को सुनाने लगी, बाबा मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, बहुत लंबा चौड़ा सुनाने लगी। और बाबा बिल्कुल न्यारे, बिल्कुल न्यारे। अब बाबा उनको कैसे कहे कि बहुत तुमने बहुत सुना दिया, तो ये नहीं क्या बस करो अभी और मत सुना, वो सुना लिया। हाँ, कई तो कह तो ऐसे ही बोल देते हैं ना, ये भी किसी को हर्ट होता है, चोट लगती है, अपमान महसूस होता है कि इसको एकदम रोक देना। लेकिन बाबा ने कितनी युक्ति से उसको कहा, बाबा ने कहा बच्ची आपने बहुत सेवा की, आपने ये पत्र में भी लिखा था ना? जी बाबा मैंने पत्र में लिखा था, बाबा ये लिखा था, ये अभी वो क्या लिखा था वो भी बोलने लगी। तो बाबा उसको चुप कैसे कराए, बाबा ने एक ही लाइन कही, बच्ची बाबा जानते हैं। अब सोचो कैसे बाबा कर्मातीत अवस्था को के नजदीक आ रहे हैं और बाबा ये सब विस्तार सुनना नहीं चाहते थे, बाबा जानते हैं। तो तो ये जैसे ही बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं, माना अभी चुप हो जाओ, अब ज्यादा मत बोलो, इतनी बढ़ाई नहीं करो, है तो कार्य भगवान का, मेरा थोड़ी है। चलो आपके अंदर कोई कला है, कोई विशेषता है, चलो आपने कुछ भी दिखाया, लेकिन वो वर्णन करते करते अपना अभिमान दिखाना, ये तो फिर गलत हो जाता है। तो बाबा ने उसको एक ही शब्द कहा, बच्चे बाबा जानते हैं, है ना, चुप हो जाओ, पर ज्यादा बोल दिया, बहुत बहुत हो गया, पर ऐसे नहीं कहा, बाबा जानते हैं। और एकदम से वो चुप हो गई, एकदम चुप, नहीं तो वो समझ ही नहीं पाई बाबा की स्थिति कितनी ऊंची है, और हम क्या बाबा से ये बातें कर रहे, ये गए फिर वहां गए फिर वहां गए, ये किया वो किया। खैर, अब हमने दादियों को भी ऐसे ही देखा, जब वो कर्मातीत अवस्था को पाती पा रही थी, दादी प्रकाशमणि जी में तो हमने बहुत ही ज्यादा देखा, अपनी आंखों देखा, अनुभव है कैसे दादी प्रकाशमणि कितनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे। 38 साल तक दादी जी ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, सब में इतनी एक्टिव थी। अभी बाबा की अव्यक्त मूल्यों में आता है ना कि कैसे दादी को था बस 1,00,000 की सभा हो, आज तो बाबा की मुरली में आया, दादी जी को था अभी 1,00,000 की सभा का तो प्रोग्राम के अभी 1,00,000,000 भी होना चाहिए, यहाँ तक कहा। तो बाबा ने तो और ही दादी जी को उस समय क्या कहा, उस आज जो मुरली सुनाई, दादी जी को बाबा ने कहा कि 1,00,000,000 तो क्या सभी आत्माओं को बाबा का संदेश देना, 1,00,000,000 थोड़ी, अब दुनिया की आबादी 800 करोड़ है इस समय, दुनिया की आबादी, अब उसमें 1,00,000,000 भी क्या बड़ी बात है, है क्या बड़ी बात नहीं ना। देखो अभी कुंभ मेले में कितने आ गए हैं, 1,00,000,000 से ज्यादा, 1,50,000,000 तो एक पहले दिन में ही आ गए लोग देखने के लिए कुंभ मेला, और अपना भी मेला कितनों ने देखा। तो देखो बाबा को तो अपना कार्य कराना ही है, तो बाबा ने तो आज ये भी मुरली में कहा दादी को, हाँ 1,00,000,000 तो क्या इनसे भी आगे, अब सारे विश्व को बाबा का संदेश देना है कि अब अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, उनकी पहचान देनी है, और परमात्मा आकर अपना कार्य कर रहे हैं, ये सबको संदेश देना है। नहीं तो बाबा कहते हैं क्या होगा अगर नहीं मिलेगा संदेश, तो उल्हेना देंगे कि हे भगवान आप आए इस सृष्टि पर और हमें मालूम भी नहीं पड़ा, ये उल्हेना है, उल्हेना होगा ना ये, तो ये उल्हेना ना मिले, पर ये भले कहेंगे क्योंकि सब तो ज्ञान लेंगे नहीं, ये जरूर कहेंगे हे प्रभु तेरी लीला, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। क्यों तेरी लीला अपरम अपार, क्योंकि हे प्रभु आप आए पर हमने नहीं समझा, ये जरूर कहेंगे, पर ये उलहना नहीं है, उलहना माना आप आए हमें पता भी नहीं चला, ये है उलहना, कंप्लेन है, पर ये कंप्लेन नहीं होगी कि हे अहो प्रभु तेरी लीला, आप आए और हमने आपको पहचाना नहीं, ये तो जरूर कहेंगे। तो जिन्होंने पहचाना वो तो भाग्य की लकीर, आज बाबा ने कहा ना भाग्य की लकीर आपके मस्तक पर है, तो वो तो भाग्यशाली बन गए, भगवान की पालना में पल रहे हैं, वो तो अपना भविष्य 21 जन्मों को सुहाला कर दिया है। लेकिन जो नहीं समझते नहीं मानते वो तो अंत में यही कहेंगे ना, हे प्रभु आपने हमें बताया लेकिन हमने नहीं माना, तो वो उनका दोष हो जाएगा, आपका दोष नहीं होगा। तो बाबा कहते 3 लाइन लगेगी अंत में, एक तो उल्हेना देने वाले भी जरूर होंगे कि कोई कोई रह जाएंगे, और दूसरे होंगे जो पछतावा करेंगे, और तीसरे देखो जो स्कॉलरशिप ले लेंगे, इतना भाग्य प्राप्त कर लेंगे भगवान से, और धर्मराज को भी टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ जाएंगे, धर्मराज भी उनके आगे झुक जाएगा, तो ऐसे हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। जब ये टीवी का प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था, हमारा कोई प्रोग्राम टीवी पर नहीं आता था और टीवी का इतना पता भी नहीं था, क्योंकि टीवी तो अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 60s से ही थोड़ी आई है टीवी, 70s के बाद थोड़ा हुआ कुछ, और 80s 90s में ये टीवी का इतना विस्तार हुआ है, मीडिया का विस्तार, प्राइवेट चैनल्स आए हैं, उसके पहले तो कुछ ऐसा था ही नहीं। तो उस समय एक विदेशी बहन ने दादी प्रकाशमणि जी से पूछा था कि दादी जी, बाबा तो कहते सारे विश्व को संदेश देना है, अब विश्व तो बहुत बड़ा है, कैसे सारे विश्व को संदेश देंगे? तो दादी ने उस समय एक वेग माना, कोई एकदम स्पष्ट नहीं, लेकिन एक जो दादी के स्वप्न में था या जो उनके विचारों में था, दादी ने कहा कि नहीं, एक वो आकाश में कुछ होगा और उसके द्वारा सबके घरों में आएगा, वो टीवी सैटेलाइट, ये तो उस समय नाम भी नहीं जानते थे, तो ये होगा और घर घर में ये संदेश अपने आप पहुंच जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा, हम थोड़ी एक एक के घर में जाएंगे संदेश देने, अपने आप पहुंच जाएगा। तो वो बहन विदेशी थी, वो तो हैरान हो गई, ये कैसे होगा, कैसे सारी दुनिया को पता चलेगा, हम तो इतनी छोटी संस्था है, इतने थोड़े लोग हैं, हाँ इतने से हैं, हाँ 5 पांडव ही बाबा बताते हैं, लेकिन सारे विश्व को कैसे मिलेगा? तो दादी ने बड़ी बड़ी बातें कही, उस समय था नहीं टीवी का, कुछ जानकार भी नहीं थे, लेकिन ये बाबा ने कहा, दादी ने कहा, जैसे बाबा की उनको टचिंग आई, तो सचमुच आज हम देख रहे हैं कैसे बाबा अपना कार्य करा रहा है। सचमुच आज ऐसा कोई नहीं होगा जो ब्रह्मा कुमारियों को नहीं जानता होगा, हम कहीं भी जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वह ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी है, और हम जो कहते हैं वो सुनने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अभी समय ऐसा आ गया है। पर ब्रह्मा बाबा कैसे धीरे धीरे कर्मातीत बनते गए, दादियों को हमने देखा कर्मातीत बनते हुए, तो दादी तो बहुत एक्शन में थी, सब कुछ जैसे दादी के ही तो सानिध्य में ये सब शांतिवन बना, दादी जानकी के सानिध्य में सारे विश्व में सेवा हुई, जहां दादी जानकी जाते थे वहां उस देश में सेंटर खुल जाता था, सब तैयार होते थे सेंटर खोलने के लिए, तो दादी जानकी जी की सेवा विश्व में हुई, और दादी जी ने कैसे भारत में रहकर ये पहले शांतिवन ये इतना बड़ा देखो हॉल बनाया, थी तो सारी बाबा की प्रेरणा। जब ओम शांति भवन में बाबा पहली बार आए 1983 में, ओम शांति भवन का उद्घाटन किया, तो उस समय हॉल तो बहुत बड़ा था, 3000 लोग बैठ सकते हैं ओम शांति भवन के हॉल में, तो बाबा ने कहा हॉल तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन अकोमोडेशन कहाँ, रहने की व्यवस्था नहीं थी पांडव भवन में, तब तो ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ था ही नहीं, रहने की व्यवस्था कुछ नहीं थी, तो बाबा ने कहा हॉल तो बहुत बड़ा बना लिया लेकिन रहने की व्यवस्था कहाँ। 83 में पहला हम लोगों का विश्व शांति सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन से रॉबर्ट मुलर जो वहाँ का सेक्रेटरी जनरल था, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, वो आया था, यूएन के अब मेंबर बन गए थे, और इतने लोग आए और रहने की अकोमोडेशन नहीं, सारे माउंट आबू के होटल ले लिए थे, होटल लिए थे, धर्मशालाएं ले ली थी, इतने हजारों लोग आ गए थे, यहाँ पांडव भवन में तो इतना छोटा सा पांडव भवन में तो कहाँ स्थान था। तो बाबा ने कहा रहने का स्थान कहाँ है, तो कैसे ये ज्ञान सरोवर की जमीन मिल गई, वो भी बंजर जमीन थी, हमारे दूध वाले जो दूध पहुंचाते हैं उनों की जमीन थी, और बाई चांस उसी समय दादी जी को उन्होंने बताया कि हमारी ऐसी जमीन है, आपको खरीदनी है तो आप खरीद सकते हैं, तो दादी जी ने बिल्कुल हाँ कर दिया, फटाफट वो जमीन खरीद ली, और देखो आज कितना बड़ा ज्ञान सरोवर बन गया है, कैसे आते हैं आत्माएं। अब ज्ञान सरोवर तो बन गया, अकोमोडेशन बहुत मिल गई, वहां तो बहुत अच्छी अकोमोडेशन है, काफी लोग रह सकते हैं, परंतु फिर हॉल बहुत छोटा हो गया, वो ज्ञान सरोवर का जो हारमोनी हॉल है वो बहुत छोटा हो गया, केवल बस कितने 1500 ही मुश्किल से बैठ सकते हैं उस हॉल में। तो बाबा ने कहा दादी जी को, अब ये अकोमोडेशन तो चलो आपने बना ली ज्ञान सरोवर, लेकिन हॉल बहुत छोटा है तो पहले का अकोमोडेशन कहाँ है, तो अकोमोडेशन बनाई पर हॉल छोटा बनाया। तो फिर बाबा ने कहा हॉल तो बहुत छोटा है, अब हॉल छोटा है तो माउंट आबू में इनसे बड़ी जमीन कहाँ मिलेगी जो हॉल हम बना सके। तो फिर देखो उसके बाद शांतिवन बना, और शांतिवन देखो इतना भव्य हॉल बाबा ने बनवाया, डायमंड हॉल, डायमंड जुबली साल था उस समय 96 डायमंड जुबली हॉल वो वर्ष था, तो इसलिए इसका नाम डायमंड जुबली हॉल रखा। आज की जो मुरली चली वो उस समय 40 वर्ष हुए थे बाबा को अव्यक्त हुए, 69 से लेके 2003, तो मानो ये 60 साल से 40 साल हुए थे। तो बाबा ने कहा देखो 40 साल हो गए, या तो जीरो को बाबा ने पकड़ा, अब जीरो से क्या बनना है, क्या बनना है, हीरो बनना है, तो जीरो। तो देखो बाबा ने ये जो कार्य कराया, पर हम दादी जी को देखते थे अंतिम दिनों में, दादी जी का भी एक साल बिल्कुल ऐसा न्यारा हो गया, बहुत ऊंची स्टेज, इतनी ऊंची स्टेज, दादी के पास हमने तो जाते रहते थे, आराम से जाते थे, बातें करते थे, यहाँ की सेवा की कई बातें करते थे, लेकिन दादी जी के अंतिम दिनों में हमने देखा वो कर्मातीत अवस्था को जैसे प्राप्त कर रही है, इतनी जब देखो दृष्टि देती है, अभी रतन मोहिनी दादी भी ऐसे ही दृष्टि दे रही है बस, पर दादी जी दृष्टि देते थे और जो महावाक्य उच्चारण करते थे वो बिल्कुल ऐसे ऊंचे महावाक्य, पुरुषार्थ के महावाक्य, बस और बातों से न्यारी होती गई दादी, और कैसे सब ने संभाल लिया एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, और दादी न्यारी होती गई। कई बार मन में आता था बाबा दादी को मैं ये कहूँ, ये पूछूं, वो पूछूं, लेकिन जब दादी जी के सामने जाते थे सब कुछ भूल जाते थे, सब सचमुच सब कुछ भूल जाते थे, क्योंकि दादी की स्थिति इतनी ऊंची, और हम वो छोटी छोटी बातें दादी के पास ले जाएं तो लगता था ये तो बहुत छोटी बातें हैं, और दादी की स्थिति तो कितनी ऊंची है, ये क्या छोटी बातें हम दादी से पूछे, वो तो कर देंगे, हो जाएगा। तो दादी को कहते दादी आप बोलो, हम नहीं बोले, हम तो चुप रहे, बस दादी जी बोले, दादी जी से हम सुने, दादी जी ही हमें प्रेरणा दे। तो इतनी ऊंची दादी की स्थिति थी। एक बार तो यहाँ तक ऐसे ही हुआ कि मीडिया वाले दादी जी से मिले, तो दादी जी से यही पूछा कि दादी आप ये सब कैसे कर रहे हो, तो दादी ने कहा मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, ये सब भाई बहने कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, इतनी बड़ी संस्था, इतने सारे सेवा केंद्र, इतनी सारी समर्पित बहने, तो क्या दादी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ये जो क्योंकि और भी सब वरिष्ठ भाई बहने बैठे थे, मीडिया के लोग भी बहुत आए हुए थे, तो मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, हाँ ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहे नहीं दादी आप बताइए कैसे ये सब आप सब एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तब दादी जी ने सारा बताया कैसे ये हेड ऑफिस है, फिर जोनल हेड्स है, एक एक जोन है, उस जोन का हेड है, फिर उसका सब जोन है, फिर सब जोन में सेंटर्स है, फिर उसकी गीता पाठशालाएं हैं, दादी जी ने विस्तार में कहा। तब उनकी आंखें खुली, तो ये दादी जी के अंदर सब कुछ था, लेकिन धीरे धीरे ये सब दादी बिल्कुल समेटती गई। ये सब कैसे हुआ, दादी जी की स्थिति इतनी ऊंची बन गई, हम देखते थे दादी कर्मातीत बनती जा रही, फिर धीरे धीरे केवल दृष्टि देती रही बस, कुछ भी नहीं, और काम अपने आप होता रहा, कारोबार में कोई रुकावट नहीं आई, भगवान का कार्य है, ये कोई इंसान का कार्य नहीं है। तो दादी न्यारी प्यारी हो जाती थी। किसी ने दादी से ये पूछा, दादी आपका इतना कारोबार, आपको नींद आती है रात को? दादी ने कहा, क्यों नहीं आएगी नींद, मैं तो एक छोटा बच्चा बन जाती हूँ, बाबा की गोद में समा जाती हूँ। हाँ, तो छोटे बच्चे को तो फटाफट नींद आ जाती है। तो वो बोझ तो कभी दादी ने महसूस ही नहीं किया, और कैसे दादी जी हाँ उपराम होती गई होती गई। तो हम अपने आप से पूछें कि हम किस स्थिति में हैं, हमारा क्या हाल है। इसलिए बाबा हमें बार बार वार्निंग देते हैं, बच्चे इस समय अगर शरीर छूट जाए तो क्या स्थिति होगी, क्योंकि सब कुछ अचानक होना है। अभी ये लॉस एंजेलिस अमेरिका वालों को ये मालूम था क्या कि ऐसी आग लगेगी, इतनी भयंकर आग लगेगी, इतने सब जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति उनके सारे मकान ऐसे जल जाएंगे, इतनी जंगल में आग लगेगी जो अभी तक बुझाना भी हाँ कितना मुश्किल हो रहा है। इतना बड़ा लॉस एंजेलिस, वहाँ का हॉलीवुड जहाँ फिल्में बनती है, डिज्नीलैंड है वहाँ, हाँ तो वहाँ पर भी कैसे ये आग चली गई। मानो सरकार क्या, साइंटिस्ट क्या, ये सब बिल्कुल बेबस हो गए, वो आग कैसे बुझेगी। अभी तो केवल दो तत्वों ने काम किया वहाँ, एक तो आग और दूसरा हवा। हवा इतनी तेज चली जो वो आग को बुझने नहीं देती थी, हवा और भड़क जाती थी और जंगल के जंगल राख बन गए हैं वहाँ। इतने लोग मर गए हैं या कईयों गई बेघर हो गए हैं, क्या नहीं हुआ है। इतने युद्ध चल रहे हैं, बहुत समाचार हम लोगों को मिलते रहते हैं, परंतु बाबा का घर वहाँ बहुत सेफ है लॉस एंजेलिस में। बाबा के बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बहुत सुंदर सेंटर है बाबा का लॉस एंजेलिस में, परंतु बाबा के घर सब सेफ है और सब ने इतनी तपस्या की। और वंडरफुल बात तो ये हुई कि इसके बाद लोग आने लगे सेंटर पर, सेंटर पर ज्यादा आने लगे तो सेवा और बढ़ गई और बाबा की सेवा बढ़ गई, क्योंकि लोगों को वैराग आ गया, वैराग आ गया। अभी इसराइल और पैलेस्टीन के भी झगड़े चलते रहते हैं, वहाँ भी हमारी सेंटर है, इसराइल में सेंटर है। तो अभी इसराइल की कुछ बहनें आई तो वो बता रही थी कि हम बच्चों को बाबा कैसे मदद कर रहे हैं। अब एक जगह बॉम्ब गिरना है और ये बहनें कहीं जा रही है तो जैसे ब्रह्मा बाबा उनके सामने खड़े हैं सफेद वस्त्रधारी, और बाबा उनको कह रहे हैं बच्ची यहाँ से नहीं जाओ, यहाँ से जाओ, जैसे उनको रास्ता दिखा रहे हैं। और सचमुच वो जा रहे हैं और जहाँ के लिए रोका नहीं जाओ वहाँ बॉम्ब गिरता है और वहाँ सब विनाश हो जाता है और बाबा के बच्चे बच जाते हैं। तो देखो ऐसे बाबा रक्षा कर रहा है बच्चों की। लेकिन बाबा ये तो जरूर कह रहे हैं कि जो कुछ होगा अचानक होगा, तो अचानक का सामना करने के लिए एवर रेडी रहना पड़ेगा। और पेपर भी कौन सा होगा, एक सेकंड का पेपर होगा, आज बाबा ने मुरली में कहा। और वो कौन सा पेपर होगा, एक सेकंड की परीक्षा, वो पेपर हाँ या ना में जवाब देना है बस, कि उस समय एक बाबा के सिवाय और कोई याद न आए, बस यही पेपर होगा, कुछ भी याद न आए। अभी तो कंप्लेन करते क्या करूं, बाबा की याद में बैठता हूँ, ये व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, व्यर्थ संकल्प यही उलहना देते हैं। लेकिन अगर ये व्यर्थ संकल्प अंत में भी आ गई हमारे, तो बताओ क्या गति होगी हमारी। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए अशरीरी होने का। हमारी दादियों ने यही तो प्रैक्टिस किया, एक सेकेंड में अशरीरी हो जाती थी। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा ने यही प्रैक्टिस किया और कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, एक सेकेंड में अशरीरी। ये देहभान बिल्कुल मिट जाए, मेरे ओरिजिनल संस्कार हमको याद आ जाए, जो आज भी बाबा ने कहा सदा स्वमान में रहें। स्वमान में रहना ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है। कैसा स्वमान है में रहें हम? आज बाबा ने ये भी विशेष कहा कि जब स्वमान में रहेंगे तो जो अभिमान है वो मिटेगा। एक होता है स्वमान, दूसरा होता है अभिमान। तो स्वमान माने आत्मा का मान। अब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझे पता है यही मेरा मूल स्वभाव है। तो चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा कितना भी अपमान करे, लेकिन मैं तो जानती हूं ना मैं कौन हूं। मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूं। तो शांत स्वरूप का मान रखना, तो वो जो देह का अभिमान है, हाँ ये मुझे ऐसे क्यों कह रही है, ये मुझे ऐसे क्यों कह रहा है, ये क्या समझता है, चोट अंदर में पेन होता है, दर्द होता है कि किसने मेरी निंदा कर ली, मेरी ग्लानी कर ली। अब कोई बात नहीं, निंदा मेरी जो करे, मित्र हमारा सो, यही कहते ना। वो तो हमें सिखा रहा है कि कैसे अपने में परिवर्तन लाओ। तो परिवर्तन लाना तो बहुत जरूरी है ना, तो वो तो हमें शिक्षा दे रहा है, मेरी निंदा नहीं कर रहा है। पर ये हम अगर अपने अंदर समझें और आत्मा के स्वमान में रहें कि मेरी शांति कोई भंग नहीं कर सकता है, मैं उस समय गुस्से में नहीं आऊंगी, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं, यही तो मेरा ओरिजिनल संस्कार है। तो किसने अपमान भी किया तो मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए, अपमान क्यों महसूस होना चाहिए? अपमान महसूस करना माना अभिमान है। तो बाबा हमें जो स्वमान देते, अपने गुणों का स्वमान, बाबा ने इतने टाइटल्स दिए हैं, उन टाइटल्स का स्वमान, बाबा हमको किस रूप में देख रहे हैं, वो भले किस भी रूप में देखे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, वो तो अपनी नजर से देखेगा, उसको अंदर में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, वैर है, दुश्मनी है, कोई कुछ भी होगा, और मुझे उसी नजर से देख रहा, उसी नजर से बोल रहा है। लेकिन मैं तो अपने स्वमान में रहूं ना, बाबा मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, कितनी ऊंची नजर से देख रहा है बाबा, इतने सुंदर सुंदर टाइटल बाबा हमें दे रहा है। तो वो टाइटल्स का स्वमान, ये इतना बड़ा स्वमान है जिसके आधार से हम सहज न्यारे और प्यारे हो सकते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों में अभिमान आ जाता है, छोटी छोटी बातों में अपमान महसूस होता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, हाँ छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं और वही व्यर्थ संकल्प चलते हैं। लेकिन एक सेकंड में जीरो, तीन बिंदु लगा दिया, बस जीरो। ड्रामा का ज्ञान भी बाबा ने दे दिया है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है ये भी बाबा ने बता दिया है। तो उन बातों में हम जाएंगे ही नहीं। अपना श्वास, समय, संकल्प, ये बहुत कीमती है। ये जब हम महसूस करते हैं तो अनुभव होता है कि हमें इनकी बचत करनी है। तो अंत की स्थिति हमारी तब श्रेष्ठ होगी जब बहुत काल का अभ्यास होगा, और बहुत काल का अभ्यास के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अचानक होना है। इसलिए तीन शब्द बाबा कहते, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। तो बहुत काल का अभ्यास होगा तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, बहुत काल का अभ्यास होगा तो हम एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे, बहुत काल का अभ्यास होगा तो जीरो से हीरो बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आज बाबा ने चारों विषयों पर भी बोला, तो चारों विषय जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों विषयों में हमें इतना सार गर्भित होना है। दो शब्द ही बोले लेकिन वो सेवा इतनी उससे हो जो वो कहे कि बस जो ज्ञान है वो आप में ही है, विस्तार में जाने की जरूरत ही नहीं है। दादियां कहाँ विस्तार में जाती थी, दो शब्द बोलती थी और बस उसी की तारीफ करते थे लोग कि कैसे इतना सुंदर स्थिति बना, इतना सुंदर वातावरण बनाया दादी के आने से ही। और जैसे सबको दृष्टि देती है कैसे सब उड़ रहे हैं। तो बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि हम बच्चे बाबा का नाम तो बाला करें ही, बाबा को प्रत्यक्ष तो करें ही, लेकिन उसके पहले अपनी स्वस्थिति इतनी ऊंची बनाएं ताकि दुनिया वाले यही कहे कि यही महान आत्माएं हैं, यही सच्ची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अभी तो यही कहते आप लोग बहुत अच्छा सुनाते हो, पर वो लोग भी अच्छा सुनाते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, आप भी अच्छा सुनाते हो। पहले तो सुनने को तैयार नहीं होते थे, अभी सुनते हैं, अच्छा है आपका, ये भी कहते रहा, उनका भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है। लेकिन अंत में वो समय आएगा जब कहेंगे आपका ही अच्छा है, अभी तो आपका भी कहते हैं, आपका ही। पर आपका ही ये कब कहेंगे, जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची होगी, क्योंकि इसी के आधार से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो ब्रह्मा बाबा जैसे कर्मातीत बने, हम बच्चों को भी यही स्थिति अपनी बनानी है। और ये जितनी भी मुरलियां चल रही है, चाहे साकार मुरलियां चाहे अव्यक्त मुरलियां, बाबा हमको इतना स्वमान देते, हर मुरली में कोई ना कोई टाइटल जरूर बाबा देते हैं, तुम कौन हो। दादी जानकी जी सदा इस नशे में रहती थी, 3 बार ओम शांति कह करके क्या नशा जताती थी, मैं कौन, मेरा कौन, कहती थी ना। जिन्होंने दादी जानकी को देखा था हाथ उठाएं, वो तो ने देखा। जिन्होंने दादी प्रकाशमणि जी को देखा वो हाथ उठाएं, अब देखो वो थोड़े हो गए हाँ, क्योंकि 2007 में दादी प्रकाशमणि जी गए। और जिन्होंने दादी चंद्रमणि को देखा था वो हाथ उठाएं, वो तो बहुत ही थोड़े हैं हाँ। दादी चंद्रमणि भी एकदम शेरनी शक्ति थी, शेरनी शक्ति, बात मत पूछो, ललकार ऐसे करती थी, लंबी चौड़ लंबी थी, एकदम बहुत स्ट्रांग थी। बाबा उसको कहते ही थे पंजाब का शेर, पंजाब की शेरनी, पंजाब के लोग हट्टे कट्टे, हरियाणा के भी हट्टे कट्टे। तो ऐसी थी हमारी दादी चंद्रमणि। और कितनी बहनों को उसने ज्ञान में लाया, कितनी बहनों को समर्पित कराया, तो देखो पंजाब की शेरनियां है ना, सब सब शेरनियां हैं हमारी बहनें। पंजाब मीन्स टोटल पंजाब, हरियाणा भी उसमें है, जम्मू कश्मीर भी है, सब है। तो यही बाबा हम सबसे चाहते हैं, बहनों से तो वो मिलती है सकाश, लेकिन हर एक बन जाए तो देखो जल्दी जल्दी सतयुग आ जाए। लाना है ना सतयुग को, लाना है या नहीं लाना है, कि ऐसे अच्छा है संगम ही चलता रहे, सतयुग को भी लाना है। तो सतयुग को लाना है, ये दृढ़ संकल्प लाना है, उसके लिए हमें देवता बनना होगा। पर देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना होगा। आजकल जो भी वरदान आ रहे हैं सब फरिश्ता कैसे बने वो आ रहे हैं, पर फरिश्ता बनने से पहले संपूर्ण बनना होगा। तो पहले संपूर्ण बनेंगे, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। और संपूर्ण बनने से पहले कर्मातीत बनना पड़ेगा। कर्म भी कर रहे हैं पर कर्म के बंधन से न्यारे हैं। मैंने किया ये संकल्प भी नहीं, मैं कर रही हूं, मैं तो निकल ही जाना चाहिए। दादी जी कभी नहीं कहती थी मैं, कभी नहीं, बड़ी दादी दादी कह रही है, माना दादी मीन्स एक इतना फोर्स दे रहे, मैं तुमको कहती हूं ऐसे कभी नहीं कहा, दादी कह रही है। दादी जानकी तो बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे, दादी जानकी कहती मैं भी कुछ नहीं हूं, ब्रह्मा बाबा भी कह रहे थे मैं भी कुछ नहीं हूं, सब शिव बाबा करा रहे हैं। तो देखो हर एक ने शिव बाबा को ही आगे रखा, और बाबा फिर बच्चों को आगे रखते हैं। और इसी प्रकार हम सब मिलकर बाबा के साथ वापस जाएंगे, बाबा इंतजार कर रहे हैं वतन में। 65 कितने साल हो गए, 55 साल, 56वां ये स्मृति दिवस था। तो स्मृति दिवस हो, स्नेह दिवस हो, समर्थी दिवस, बाबा हमें समर्थि देते रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं, हर मुरली में हम सुनते हैं प्रकृति हमारा इंतजार कर रही है। प्रकृति भी कहती है कब तक, एडवांस पार्टी में हमारे महारथी चले गए वो भी कहते कब तक, तो हम कहें कब तक हा? कि हम एवर रेडी है, जो समझ से एवर रेडी है हाथ उठाएं। अब देखो सब हाथ नहीं उठ रहे, एवर रेडी, बाबा कब भी बुलाए हम तैयार है, हाथ उठाओ भाई जो समझते बाबा कब भी बुलाए, सच्ची सब तैयार एवर रेडी, क्योंकि अचानक का पेपर आएगा अचानक का पेपर आएगा, लेकिन हम सब उसमें पास हो जाएं जरूर। तो और पास विद ऑनर होकर वापस बाबा के साथ परम धाम के गेट खोलें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो
तपस्या कहते हैं किसे तपस्या।